लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, वह कौन सी चीज है जो मानव को दुनिया के सभी जीव जंतुओं से भिन्न एक अलग अद्वितीय प्राणी बनाता है? यह मानवीय विवेक है जिसके कारण मानव दुनिया के सभी जीव जंतुओं से अलग अपने में सृष्टि का सिरमौर बनता है। इस तरह यदि हम एक स्वस्थ मानव की बात करें तो वह अपने मानवीय विवेक के कारण अपने लिए अच्छी और बुरी चीजों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन चीजों का चुनाव करता है जो उसके लिए अच्छी हैं। वह उन वस्तुओं का चयन करता जो उसे आंतरिक खुशी और आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। इस भांति अपने इस चुनाव में वह न केवल अपनी चिंता करता वरन दूसरों का भी ख्याल रखता है, जो मानव समाज में अमन चैन की स्थिति उत्पन्न करती और सभी अपने में संतोष का अनुभव करते हैं। यह विवेक मानव के लिए वह ईश्वरीय वरदान एक दिव्य शक्ति है जो उसे स्वयं अपने अंतरात्मा से एक चित होने में मदद करती है, जिसकी बदौलत वह स्वतः ही सही और गलत के मध्य अंतर सुस्पष्ट कर लेता है। मानव अपने विवेक के कारण जिसे हम प्रज्ञा की संज्ञा देते हैं अपने जीवन में सदा ही सही बातों का चुनाव करता और अपने जीवन में सफल होता है। यदि हम धर्म ग्रंथ बाइबल में इस प्रज्ञा और विवेक की चर्चा करें तो हमारे मनस पटल में राजा सुलेमान का नाम स्वतः ही उभर कर आता है, जिन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल करने हेतु ईश्वर से सिर्फ प्रज्ञा और विवेक की मांग की और इसके बदले उन्हें जीवन के अन्य सारी जरूरत की चीजें मिल गईं। श्रोताओ, पूजन विधि वार्षिक कालचक्र आ के छठवें सामान्य रविवार आराधना विधि हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु भी हमारा ध्यान ईश्वरीय प्रज्ञा की ओर कराती है। आज का सुसमाचार हमारे लिए ईश्वरीय संहिता के अनुरूप मानव के लिए उन नियमों की चर्चा करता है जिसका अनुपालन करना जीवन में सच्ची खुशी की अनुभूति लाती है। आइए हम सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने लिए उसी ईश्वरीय प्रज्ञा और विवेक की याचना करें जिससे हम अपने जीवन में सही बातों का चुनाव कर सकें, जो न केवल हमें वरन हमारे इर्द गिर्द रहने वालों के लिए खुशी का कारण बनती है।
मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वरीय संहिता में निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु शक्ति प्रदान करे, जिससे हम अपने को उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने हेतु तैयार कर सकें, जिसके लिए हमें यह जीवन दिया गया है।
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए।
प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें कहता है, यदि तुम चाहते हो तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने मानव के लिए जीवन और मरण दोनों रखे हैं, और वह अपने लिए जिन बातों का चुनाव करता वही उसका जीवन हो जाता है। श्रोताओ, यहाँ हम मानव के लिए चुनाव की बात देखते हैं, जहाँ ईश्वर हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ईश्वर ने हमें न केवल मानव के रूप में जीवन दिया है, वरन इस जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीने हेतु उन्होंने हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। अपने इस स्वतंत्रता में हम जिन बातों का चुनाव करते वही बातें हमारे लिए या तो जीवन का कारण या मरण का कारण बन जाती है। ईश्वर हमसे अच्छे जीवन की चाह रखते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे और सुंदर जीवन के द्वारा ही उनके पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होती है। श्रोताओ, आज का सुसमाचार प्रवत प्रवचन का वह भाग है जहां यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के लिए धन्य वचनों को घोषित करते हैं। अपने धन्य वचनों को घोषित करने के उपरांत वे अपने शिष्यों और अपने अनुसरण करने वालों को संसार की ज्योति और नमक की उपमा देते हैं, जिसे हमने पिछले रविवार के सुसमाचार पाठ में सुना। हम किस भांति संसार में ज्योति और नमक बनते हैं, इसका वृतांत आज का सुसमाचार हमारे लिए प्रस्तुत करता है। आज के सुसमाचार में हम यीशु के नियमों को विस्तार से सुनते हैं, जो हमारे जीवन हेतु मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। श्रोताओ, जिस तरह एक माता पिता अपने संतान को जीवन में सफल होने हेतु अच्छी बातों और जीवन के नियमों की शिक्षा देते हैं, ठीक उसी प्रकार पिता ईश्वर यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें अपने पास आने की शिक्षा देते हैं। यीशु के द्वारा दी गई संहिता की आज्ञाएं सारी मानव जाति के लिए जीवन के मार्ग हैं, जिन पर चलकर हम स्वर्गीय पिता के घर स्वर्ग राज में पहुंचने के योग्य बनते हैं। यीशु ख्रिस्त स्वयं अपनी स्वतंत्रता में हमारे लिए मानव बनते और पिता के द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में जीते हुए हमें संपूर्ण जीवन प्राप्त करने का मार्ग दिखलाते हैं। हमारे जीवन की परिपूर्णता स्वर्ग राज्य की प्राप्ति है, जहां ले जाने हेतु ईश्वर के पुत्र स्वयं हमारी तरह मानव बनते और हमारे आगे आगे चलते हुए हमें अपने पीछे पीछे आने को कहते हैं। श्रोताओ, आज के प्रभु वचनों का संदेश हमारे लिए यही है कि हम ईश्वर द्वारा मिली प्रज्ञा और विवेक का उपयोग करते हुए अपनी स्वतंत्रता में उन अच्छी और जीवनदायी बातों का चुनाव करें, जिसके द्वारा ईश्वरीय नाम की महिमा होती है। ईश्वर ने हमें अपनी प्रज्ञा और विवेक से विभूषित किया है और हमारे लिए संहिता के नियमों को निर्देशित किया है। उन्होंने हमें पाप करने की छूट नहीं दी है, बल्कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए पाप के मार्ग में जाने से सचेत किया है। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वे हमारी अंतरात्मा को प्रज्वलित करें, जिससे हम सदा जीवन के मार्ग का चुनाव कर सकें।
जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, तेरी राहों पर चलना जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू तेरी राहों पर चलना सिखा दे चलना सिखा दे तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है सहारा
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन की अदालत के न्यायिक वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर शनिवार को वैटिकन सिटी की अदालत तथा न्याय एवं कानून व्यवस्था की रक्षा से जुड़े सदस्यों को संबोधित किया। संत पापा फ्रांसिस ने अपने संबोधन में दो मुख्य बिंदुओं पर चिंतन किया। पहले बिंदु पर उन्होंने सुसमाचार का हवाला दिया जो हमें सिखलाता है कि यीशु द्वारा कही गई न्याय की बातें मात्र नियम नहीं हैं, जिनका मकसद सिर्फ नियम पालन हो बल्कि हृदय की तत्परता है जो जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने जोर दिया कि न्याय हर व्यक्ति के अंदर में खुद के मन परिवर्तन से उत्पन्न होनी चाहिए। यही एक न्याय है जो न्याय उत्पन्न करता है। संत पापा ने कहा कि न्याय के साथ अन्य सद्गुणों को भी साथ रखना चाहिए, विशेषकर विवेक, संयम और धैर्य। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को ऐसा उत्तर खोजना चाहिए जो न्याय के साथ साथ करुणा से जुड़ा हो, जो भ्रांति का नहीं बल्कि पूर्णता का न्याय हो। संत पापा ने उन्हें नियम भंग करने वालों की गलती और दुर्बलता के कारणों को समझने की उनकी प्रतिबद्धता को जारी रखने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में दूसरी बिंदु पर प्रकाश डाला और वह बिंदु है वे कानून जो आपसे संबंधों एवं नैतिक मूल्यों को नियंत्रित करते हैं, जो उन नियमों को पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। उन्होंने उन सुधारों पर ध्यान दिया जिन्होंने वैटिकन विधि निर्माण में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जो आधुनिकीकरण की आवश्यकता से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा किंतु वैटिकन सिटी की ओर से परम धम्म पीठ ने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता अपनाई है उनका भी कद्र किया जाना आवश्यक है। यह समर्पण खासकर व्यक्ति एवं सामाजिक दलों की रक्षा करने से संबंधित है, अतः इन सुधारों के मुख्य उद्देश्यों को कलीसिया के मिशन में स्वीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चय ही यह उनके मिशन कार्य का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण भाग है। संत पापा ने याद किया कि हाल के दिनों में हुए सुधार ने संदिग्ध वित्तीय स्थिति को प्रकाश में लाया जिस पर अभी भी जांच जारी है, किंतु उन्होंने कहा कि अनियमितताओं की पहली रिपोर्ट वैटिकन से ही आई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा आवश्यक कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों की प्रभावशीलता और दक्षता दिखाई गई। खासकर संत पापा ने वैटिकन के सुरक्षा बल की सराहना की जिन्होंने न्याय को प्रोत्साहन देने वाले कार्यालय के समर्थन में अपनी खोजी गतिविधियों के लिए खुद को विशिष्ट बनाए रखा। सुधार के कार्यों की सराहना करते हुए संत पापा ने इस बात को भी स्वीकारा कि सुधार का सारा प्रयास लोगों पर ही निर्भर था। उन्होंने कहा, इसलिए हमें न केवल बौद्धिक बल्कि नैतिक एवं कर्तव्य के रूप से भी ऑपरेटरों के प्रति खास मनोभाव रखने की जरूरत है। इस अर्थ में न्याय को बढ़ावा देने के लिए सही लोगों के योगदान की आवश्यकता है। संत पापा ने अपने संबोधन के अंत में उपस्थित सदस्यों को यीशु के शब्दों की याद दिलाई, जिसको उन्होंने सुसमाचार में कहा है, तुम जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सुसमाचार हमें स्मरण दिलाता है कि सांसारिक न्याय के हमारे प्रयास का अंतिम क्षितिज है ईश्वरीय न्याय को प्राप्त करना, उस प्रभु को जिसका हम सभी को इंतजार है। संत पापा ने कहा कि ये शब्द हमें भयभीत नहीं करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता एवं दीनता से पूरा करने हेतु प्रोत्साहन देते हैं। और आज के ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने ख्रिस्तियों को सलाह दी है कि वे विश्वव्यापी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने 15 फरवरी के ट्वीट संदेश में लिखा है, हमारी प्रार्थना केवल हमारी आवश्यकताओं तक सीमित ना हो। एक प्रार्थना तभी सच्ची ख्रिस्तीय प्रार्थना हो सकती है जब इसका आयाम विश्वव्यापी हो। जर्मनी के म्यूनिक शहर में सुरक्षा सम्मेलन के सिलसिले में वैटिकन विदेश सचिव महादा मदश पॉल रिसेट कलाघर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वार्षिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के 35 नेता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में कई देशों के उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को वैटिकन विदेश सचिव महादा मदश पॉल रिचर्ड गलाघर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि वैटिकन राज्य सचिव से मिली जानकारी अनुसार दोनों पक्षों के बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। मुलाकात में उन्होंने वैटिकन एवं चीन के बीच संबंध पर चर्चा की, जो समय के साथ सकारात्मक रूप से विकसित हुआ है। गौरतलब है कि इस तरह की आधिकारिक मुलाकात पिछले 70 सालों में पहली बार हुई है। वैटिकन विदेश सचिव एवं चीनी विदेश मंत्री ने पिछले 22 सितंबर को हस्ताक्षरित धर्मदर्शों की नियुक्ति पर अनंतिम समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला तथा कैथोलिक कलीसिया के जीवन और चीनी लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्तर पर संस्थागत संवाद को जारी रखने की इच्छा को नवीकृत किया। वक्तव्य में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी को दूर करने के प्रयासों की भी सराहना की गई और साथ ही साथ इससे प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। अंततः दोनों पक्षों ने विश्व में शांति स्थापित करने हेतु अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की इच्छा जाहिर की तथा अंतर सांस्कृतिक संवाद और मानव अधिकार के प्रति भी चिंता व्यक्त की। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों के लिए संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान प्रार्थना अर्पित की थी। उन्होंने चीन के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य प्रकट किया था एवं विश्वासियों का आह्वान किया था कि वे चीन के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस की क्रूर महामारी से पीड़ित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि महामारी से पीड़ित सभी लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ प्राप्त करने का रास्ता खोज निकाला जा सकेगा। और संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 14 फरवरी को हंगरी के राष्ट्रपति जानोस आदे से वैटिकन के प्रेरितिक प्रसाद में मुलाकात की। वैटिकन में एक व्यक्तिगत मुलाकात में संत पापा फ्रांसिस एवं हंगरी के राष्ट्रपति ने बुडापेस्ट में आयोजित आगामी 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टिक कांग्रेस पर बातें की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।